وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے آیت نمبر 11 تک پڑھ لیا تھا، بارک القرآن میں اس کی طرف سے تفسیر کر لی تھی بارک القرآن سے. آج جو ہے آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو براہ راست مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اوائڈ کرو، کثیرم من الظن، بہت سارے گمانوں سے یا بہت تہمتیں کرنے سے، بہت گمان کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. یا اس کا مطلب جیسے تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ گمان کی بہت ساری مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے اکثر شکلیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ شکلیں نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں. تو جو نقصان دہ شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے، جو کہ کثرت میں ہوتی ہیں، زیادہ شکلیں گمان کی نقصان دہ گمان ہوتی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض ظن یہ گناہ ہوتے ہیں. گناہ کے لیے عربی زبان میں اسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ظلم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تجسس بھی نہ کرو یعنی لوگوں کے بھیدوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، اور کسی کو برا نہ کہو اس کے پیٹھ پیچھے. یغتب، اس کو برا نہ کہو، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، اس کا یہ محاورتن ترجمہ بنے گا، لا یغتب بعضکم بعضا. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن، اس حالت میں کہ اس کا بھائی مردہ ہو، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، بس تم سب کے سب اس چیز کو برا ہی سمجھتے ہو، کراہیت کرتے ہو تم اس بات سے کہ تم مردار کا گوشت کھاؤ، اور خصوصاً جب وہ مردار تمہارا اپنا بھائی ہو، یعنی انسان ہو، مردہ انسان کا گوشت کھانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ سوائے کوئی عقلی طور پر بالکل ہی پاگل انسان اگر ہو تو وہی اس بات کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن باقی سارے انسان اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے معروف مسائل بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ بڑی اہم اہم باتیں حضرت نے یہاں پہ لکھی ہیں اور اچھے انداز سے ذرا آرگنائز طریقے سے بھی لکھی ہیں. تو جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کے تین چیزوں سے منع کیا تھا. پہلی چیز کیا تھی کہ تمسخر اور استہزاء نہ کریں، کوئی بھی مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں. دوسری چیز تھی کہ طعنہ زنی نہ کریں، کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، تلمزو، الزام لگانا. اور تیسری چیز تھی کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر حرام قرار دی تھیں، منع کیا تھا ان سے. तो इन तीनों की वजह भी आपको आपके सामने डिस्कस करी थी कि इन चीज़ों से मना इसलिए किया क्योंकि इनकी वजह से दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, कीना बोझ पैदा होता है और लड़ाई झगड़ा होता है घरों के अंदर, मुआशरे के अंदर। और इस कीने की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ भी नहीं करते, मग़फ़रत भी नहीं करते। ठीक है, तो ये तीन हराम चीज़ों के मुसलमानों के लिए। फिर अब इस आयत के अंदर दोबारा अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातिब होकर के मज़ीद तीन चीज़ों से मना फरमा रहे हैं। मोमिनीन को मुखातिब होना बार बार इस सूरत के अंदर जो आया है, तो उसकी क्या हिकमत हमारे मशाइख बयान करते हैं, क्योंकि ईमान वालों से इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई तुम तो ईमान वाले हो, तुम ऐसी चीज़ों में क्यों पढ़ते हो। ठीक है, जैसे कि कोई अच्छा बच्चा होता है ना, शरीफ बच्चा होता है खानदान का, तो वो अगर कोई गलत काम कर जाए तो हम कहते हैं ना कि भाई आप तो अच्छे बच्चे हैं, राइट, आप गंदे बच्चे तो नहीं हैं, तो आपने ऐसा काम क्यों किया। तो उसका अच्छा बच्चा होना उसको याद दिलाते हैं, ठीक है ना, ताकि उसको जो है वो एहसास हो और आइंदा वो ऐसे बुरे काम में ना पड़े। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ईमान वालों को भी बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम तो ईमान वाले हो। तो कौन सी वो तीन चीज़ें हैं, तो फरमाया कि मारूफ मसाइल से हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 119 119 कि ये आयत भी बाहमी हकूक़ और आदाब मुआशरत के मुतालिक अहकाम पर मुश्तमिल है। ठीक है, यानी इसके अंदर सराहतन अल्लाह के हकूक़ का बयान नहीं है और अल्लाह के रसूल के हकूक़ का भी बयान नहीं है। ठीक है, वो डिस्कशंस जो हैं वो पहले हो चुकी हैं। सहाबा कराम का भी बयान नहीं है कि सहाबा कराम के साथ तुम्हारा मामला कैसा होना चाहिए, वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब गोया कि ये आयात जो है ना, अल्लाह ताला हमसे डायरेक्टली मुखातब है, अगरचे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कभी डायरेक्टली खिताब भी किया, जैसे कि या अय्युहल लज़ीना आमनू करके खिताब किया, तो वो खिताब भी मुसलमानों तक पहुँचा नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से। ठीक है, यानी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो है वो अपनी आवाज़ मुसलमानों तक पहुंचा दी, या डायरेक्ट कोई खत लिख करके, कोई सहीफा लिख करके वो सहीफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पूरी टीम के हवाले किया, भाई पूरी टीम ऑफ फरिश्ते हैं उनके हवाले किया कि जाओ जा करके हर हर मुसलमान को मेरी तरफ से ये लेटर दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर मुसलमानों से मुखातब हूँ, मैं यहाँ पर या अय्युहर रसूल से तो मुखातब नहीं होना कि ए मेरे रसूल, या अय्युहन नबी, मैं ए नबी, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा, मैं तो डायरेक्ट मुसलमानों से मुखातब हूँ। तो चलो यहाँ पर हम रसूल को बाईपास कर देते हैं, बाईपास करना समझते हैं ना, रसूल को बाईपास कर देते हैं, क्योंकि ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है तो डायरेक्ट ईमान वालों से बात कर लेते हैं, डायरेक्ट उनको जो है वो अपनी आवाज़ सुना देते हैं या अपना पैगाम पहुँचा देते हैं लिखी शक्ल में। ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने, ऐसा कहीं भी नहीं किया, बल्कि वास्तों को इस्तेमाल किया। इवन इस मामले में भी रसूल का वास्ता इस्तेमाल किया, हत्ता कि खाली रसूल का वास्ता नहीं बल्कि रसूल के बाद सहाबा का भी वास्ता इस्तेमाल किया, क्योंकि रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने सारी आयात सुनी और सहाबा ने फिर उम्मत को बताई, फिर उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू किया, जब लिखना शुरू कर दिया तो फिर जो है वो चले लिखी शक्ल में दूसरे लोगों ने उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले तो ये लिखी शक्ल में था ही नहीं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने तो कुछ नहीं लिखा, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई चीज लिखी, कुछ भी नहीं लिखी, सिवाय वो एक तहरीर जो कि सुलह हुदैबिया के मौके पर आप ने मुअज्जाती तौर पर लिखी थी, लेकिन वो कुरान वाली तहरीर नहीं थी, वो ऐसी एक तहरीर थी, ठीक है, मुआहदे से मुतल्लिक थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं लिखा, अगर नबी अलैहिस्सलाम लिख देते कुरान को तो सहाबा बीच में से बाईपास हो जाते, राइट, क्योंकि वो लिखी हुई तहरीर नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बाकी उम्मत तक पहुंच जाती, फिर उम्मती उसको पढ़ा करते, उसकी कॉपियां बनाते, अपने घर में रख लेते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं लिखा, सहाबा ने कुछ लिखा, ठीक है ना, फिर सहाबा के बाद की जो जनरेशन थी उन्होंने और लिखा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वसीले इस्तेमाल किए इवन उन मामलात में भी जिनमें के ईमान वालों को डायरेक्ट खिताब किया जा रहा था। तो वास्तों के बगैर काम नहीं चलता, हमारे लिए टेक होम पॉइंट इसमें क्या है कि काम जो है ना वो वास्तों के जरिए से होता है। ये वास्ते हम अपने मुल्क के अंदर, मुल्कों के अंदर जो दफ्तरी मामलात होते हैं इनमें तो बड़ी बखूबी समझते हैं कि जी वो जो बॉस हैं उनके उन तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको पहले जो है वो क्लर्क साहब के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो मैनेजर साहब के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद भाई वो वास्तव को सिलसिले को हम समझते हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल वही वास्तव वाला सिलसिला अल्लाह के दीन में भी है, ठीक है, लेकिन वहां पर एक नेगेटिव अंदाज में है, यहाँ पर एक पॉजिटिव अंदाज में है। वहां पर नेगेटिव अंदाज जो है वो हाथ मरोड़ने के काम आता है, वास्तव का होना, राइट, सही काम करने नहीं दिया जाता और बीच में क्लर्क साहब आ जाते हैं, वो किसी से उनकी जेब खाली करवा रहे होते हैं, किसी का हाथ मरोड़ रहे होते हैं, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर वास्तव का निज़ाम क्यों है, दीन के अंदर वास्तव का निज़ाम क्यों है, ताकि हम क्या है वास्तव का निज़ाम का की हिकमत, दीन के रास्ते पर ये जो वास्तव का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया उसकी वजूहात अगर आप बता दें, क्यों बनाया अल्लाह ताला ने वास्तव का निज़ाम, कोई एक या दो हिकमतें बताएं, अगर बगैर वास्तव के अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, कर सकते थे सारे काम बिला वास्ता डायरेक्ट। अल्लाह ताला की कुदरत को अगर आप गौर से देखें, अल्लाह ताला कैसे कैसे रिस्क पहुंचाते हैं, एक एक चूंटी को, एक एक बैक्टीरिया को अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाते हैं। भाई बैक्टीरिया को रिस्क पहुंचाते हैं तो इंसानों को इल्म बिला वास्ता क्यों नहीं पहुंचा सकते, इंसानों से बिला वास्ता डायरेक्ट खिताब क्यों नहीं कर सकते, कोई मुश्किल है अल्लाह के लिए, लेकिन क्यों फिर क्यों वास्तव का निज़ाम इख्तियार किया, क्या उसकी हिकमतें समझ में आती हैं, ये हिकमतें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज यही हमारे लिए कुरान की हिदायात हैं ताकि हम इन पर अमल करें। तो वास्तव की हिकमतें क्या होंगी, हम बहुत गुनाहगार हैं इस वजह से, गुनाहगार का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, नहीं गुनाहगार का कोई, ये बिल्कुल गलत जवाब है। अल्लाह ताला ने शैतान से खिताब नहीं किया था, शैतान से ज्यादा गुनाहगार कोई हो सकता है, अतात बंदों की मानकर चलना, नहीं हम अल्लाह से ऐसे नहीं मांग सकते, क्यों नहीं मांग सकते, ये तो आप मरवाएंगे फिर, है ना, यानी ये जो है ना दुआ मांगने से मना कर रहे हैं, अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ नहीं मांगा करो, तो वे तो आप मरवाएंगे, लोग फिर हमें काफिर कहना शुरू कर देंगे, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। क्या रीज़न है अल्लाह ताला ने वास्तव का निज़ाम बनाया, वास्तव के जरिए से इल्म पहुँचवाया, वास्तव के जरिए से हिकमत की बातें पहुँचवाई हम तक, डायरेक्ट क्यों नहीं पहुँचा दी, आप ठहर जाएं, ठीक है, दूसरों को जवाब देने दें। ईमान की हकीकत ये यही है कि बिल गैब, अच्छा बंदे डायरेक्ट अल्लाह से नहीं ले सकते, नहीं भी ले सकते हैं, किसने कहा आपको नहीं ले सकते, ले सकते हैं, सवाल ये हो ही नहीं रहा कि अल्लाह से लेना, ताकि एक अमली नमूना हमारे सामने हो, ठीक है, अमली नमूने वाली बात चले कुछ कुछ बेहतर बात है, लेकिन तरतीब सेट करने के लिए नहीं। चलें आजिज आपको बता देता है कि एक तो ये जो कि हम बार बार हदीस मुबारक भी जिक्र करते हैं कि मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ठीक है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान आपस में ऐसा माहौल बना के रखें कि जिसमें एक इंसान दूसरे का शुक्रगुजार हो, यहाँ पे बात भी यही हो रही है ना, नफरतें नफरतें नहीं चाहते अल्लाह ताला, नफरतें नहीं चाहते, तो नफरतों के पैदा करने की जो भी वजूहात बन सकती हैं अल्लाह ताला उनसे मना फरमा रहे हैं, ठीक है ना, मना फरमा रहे हैं हमें कि गीबत ना करो, तजस्सुस ना करो, एक दूसरे को अलकाब से ना पुकारो, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, राइट, एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाओ, नफरतें नहीं चाहते, तो इन चीजों से नफरतें पैदा होती हैं, और मोहब्बतें कैसे पैदा होती हैं, मोहब्बतें कैसे पैदा होती हैं, ये मोहब्बतों से मुराद वो इंसानों के बाहिमी मोहब्बतें, ठीक है ना, वो अल्लाह वाली मोहब्बत की अभी बात मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो दूसरे तरीके से पैदा होती है, ठीक है, इंसानों के दरमियान मोहब्बतें कैसे पैदा होती हैं? शुक्र से, शुक्रिया अदा करने से। ठीक है, एक दूसरे का जब हम शुक्रिया अदा करते हैं ना, शुक्रिया अदा करने का मतलब क्या होता है कि आपके दिल में उसके खिलाफ नफरत नहीं है। अगर नफरत हो ना किसी के दिल, किसी के लिए दिल में, इंसान उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। जुबान से अगर झूठ बोल रहा हो तो वो और बात है, लेकिन दिल से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ठीक है, शुक्रिया अदा करने से मोहब्बत पैदा होती है और एक मोहब्बत का माहौल पैदा होता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, ठीक है ना। तो जो हमारे मशाइख हैं, हमारे असातिज़ा हैं, ठीक है, उन उनसे जब हम कोई इल्म हासिल करेंगे तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हम उनके मशकूर होंगे, हम उनके मशकूर होंगे, और मशकूर होने से मोहब्बतें पैदा होंगी। ठीक है, मशकूर होने से मोहब्बतें पैदा होंगी। तो एक रीजन, एक हिकमत वास्तों का निजाम बनाने की, ताकि इंसान एक दूसरे के मशकूर हो। हत्ता के रिस्क में भी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट रिस्क भी जानवरों को पहुंचाया, इंसानों को डायरेक्ट रिस्क भी नहीं पहुंचाया। इंसानों को रिस्क कैसे मिलता है? वास्तों से मिलता है, राइट। आपके घर में जो खाना आता है वो उसको उगाने के लिए कितने किसान लगे हुए होते हैं, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए कितने लोग लगे हुए होते हैं उस काम में, फिर मार्केट से घर लाने के लिए जो घर के बड़े होते हैं, जो मार्केट से खरीद करके लाते हैं, वो इंसान लगे होते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी अम्मी घर के अंदर जो खातून होती हैं, वो उस खाने को पकाती हैं, मिक्स करके कोई तरकारी, कोई डिश बनाती हैं, फिर कहीं जा करके हम पेट में डालते हैं अपने, ठीक है ना। ये सब क्यों अल्लाह ताला ने वास्ते का निजाम बनाया, इवन रिस्क के मामले में भी, ताकि हम एक दूसरे के मशकूर रहें, हमारे दरमियान मोहब्बतें पैदा हों। ठीक है, कोई इख्तलाफ इस बात में, किसी को बात ना समझ में आ रही हो कि नहीं भाई ये वास्तों की कोई ये वाली हिकमत तो मेरे समझ में नहीं आ रही, समझ में आई बात, क्लियर है? ठीक है, ताकि शुक्र गुजार हों एक दूसरे के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम भी दे दी कि मल्लम यशकुर इन्नास लम यशकुर अल्लाह। ठीक है, दूसरी हिकमत के वास्तों के बगैर बात समझ में नहीं आती, इल्म नहीं मिलता। चले छोड़ दें, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, किसी और से बात कीजिएगा बाद में इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, तो दूसरी हिकमत वास्तों का निजाम होने की, कि बिना वास्ता अल्लाह से डायरेक्टली नहीं मिलता, राइट, अल्लाह ताला से इल्म डायरेक्टली नहीं मिलता बल्कि वास्तों के जरिए से मिलता है। तो कैसे, अगर कोई और मुझसे ये कहता ना कि नहीं बात समझ में आई तो मैं उनको बात समझाता, लेकिन चूंकि आप 3 दफा ऐसी बातें ऑलरेडी कर चुकी हैं तो फिर आपको जरा एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, बाद में फिर आपसे बात होगी। ठीक है, तो किसी और को अगर बात समझ में आई हो तो वो पूछें, तो फिर उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लगता है अभी किसी और मूड में है तो उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल, तो ये जो दूसरी हिकमत कि वास्तों के बगैर नहीं मिलता इल्म, ताकि इल्म हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एक सही तरीका इल्म हासिल करने का होता है, आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा बल्कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ जहाँ पे असातिज़ा और तलबा का एक सिस्टम होता है, तालिब इल्म जो है वो उस्ताद से इल्म हासिल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इल्म हासिल करने के लिए क्या सबसे अहम चीज बताई जाती है? इल्म हासिल करने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, जिससे कि इल्म नाफे आपको हासिल होता है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल नहीं होते बल्कि नफा पहुंचाने वाला इल्म हासिल होता है, वो क्या चीज होती है जो तालिब इल्म को करनी पड़ती है उस्ताद के साथ? जी, उस्ताद का अदब करना पड़ता है, उस्ताद का अदब करना पड़ता है, उस्ताद का अदब करने से इल्म नाफे तालिब इल्म को हासिल होता है। और जो अदब नहीं करता उसको बेशक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चल जाती हैं उस्ताद सुन करके, लेकिन उससे इसको फायदा नहीं हो रहा होता, आखिरत का फायदा नहीं हो रहा होता कम से कम। ठीक है, तो अदब जरूरी होता है। अदब करने के लिए क्या चीज करनी पड़ती है, किसी का अदब करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? उसके सामने अपने आप को पस्त करना होता है। क्या करना होता है? उस्ताद के सामने अपने आप को پست کرنا ہوتا ہے، جھکانا ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو پست کرتا ہے، تو پست کرنے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جس سے کہ اس کی آخرت بن جاتی ہے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو؟ جس سے کہ پھر آخرت کی کامیابیاں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو پست کرتا ہے استاد کے سامنے اپنے آپ کو، تو اس سے اس کو کیا چیز ملتی ہے جس سے کہ اس کی آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہو جاتی ہے؟ آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ قرآن کی آیت قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہو گیا کون، کس کے بارے میں فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا، نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو قرآن نے گارنٹی دے دی سکسیس کی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ نفس کا تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے جھکانے سے، پست کرنے سے کسی انسان کے سامنے۔ ٹھیک ہے نا، پست کرنے سے نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اور جب نفس کا تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے، جنت گارنٹیڈ ہو جاتی ہے، جنت گارنٹیڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ واسطوں کا نظام نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو پست کرتے؟ کس کے سامنے اپنے آپ کو پست کرتے؟ بھئی ہم سب کو ڈائریکٹلی ہی مل رہا ہوتا اللہ تعالیٰ سے، رائٹ؟ نہ تو ہم کسی کا شکر ادا کرتے، نہ ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت محسوس کرتے۔ ٹھیک ہے نا، بھئی کیا ضرورت ہے بھئی کسی کے سامنے جھکانے کی، جب ہمیں سب کو ڈائریکٹلی مل رہا ہے، بلا واسطہ مل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے واسطوں کے سامنے جھکانے کی؟ ٹھیک ہے نا، تو اگر واسطوں کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو پھر ہم میں عاجزی نہ آتی۔ ٹھیک ہے نا، اور ہم میں عاجزی نہ آتی تو ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ہمارے نفس کا تزکیہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں جنت کی گارنٹی کیسے ملتی؟ ٹھیک ہے نا، جنت کی گارنٹی کیسے ملتی؟ تو نفس کا تزکیہ جو ہے وہ عاجزی سے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکانے سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واسطوں کا نظام بنایا۔ ٹھیک ہے، تو دو حکمتیں کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کری؟ ایک کہ ہم ایک دوسرے کے مشکور رہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں، اور دوسری چیز تاکہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ اگر ہمارے نفس کا تزکیہ نہ ہوتا نا، تو پھر ہمارے ہر انسان کے اندر یہ جو نفس موجود ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک خدا موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک خدا موجود ہے، اور وہ اسی خدا کی مان کر کے چلنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جب ہم اپنے نفس کے خدا کی مان کر کے چلیں گے تو پھر جو حقیقی خدا ہے اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ ادھر سے پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ادھر سے تو پھر ٹھینگا ہی ملے گا نا، رائٹ؟ جب اپنے نفس کے خدا کے مان کے چلیں گے تو حقیقی خدا سے تو پھر ہمیں جنت شنت تو نہیں ملنے والی نا۔ تو نفس کا تزکیہ پھر واسطوں کے نظام کے ذریعے سے انسان کا ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا یہاں پر، تو وہ پڑھتے ہیں کہ یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی تین چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اول ظن، جس کی تفصیل آگے آتی ہے، دوسرے تجسس یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، اور تیسرے غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی۔ اب پہلی چیز جو ہے ظن، تو ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان غالب کے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک انہوں نے ٹرانسلیشن لفظ ظن کی کری ہے کہ کسی کا کے بارے میں غالب گمان رکھنا، ازمپشن بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن ازمپشن سٹرونگ ازمپشن اس کو کہیں گے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ بھی یہ بیان فرما دی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا، تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں، اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کے پاس نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بڑی اہم بات حضرت نے یہاں پہ لکھ دی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ठीक है, कि बाज गुनाहों से बचो, ठीक है, क्योंकि बाज गुनाह जो है वो गुमान होते हैं। अब ये हमारे ऊपर वाजिब हो गया कि ये तहकीक करें कि कौन से गुमान गुनाह है, कौन से गुमान गुनाह है, ठीक है ना, कि ये तहकीक करें कि कौन से गुमान गुनाह है, ये इंसान के ऊपर वाजिब हो गया। ये मुसलमान जो के अपने आप को अल्लाह का बंदा कहता है, कुरान पर ईमान लाने वाला कहता है, तो उसके ऊपर ये बात वाजिब हो गई। तो क्या बात सामने आई, सामने ये बात आई कि सिर्फ वितर की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं होता, राइट। सिर्फ वितर, हम कहते हैं ना जी वितर वाजिब, 3 रकत हमने नियत करी होती है रोजाना ईशा की नमाज के बाद। हम समझते हैं जी हमारी जिंदगी में वाजिबात जो है वो बस इसी तरह की चंद इबादतें हैं जो कि हमारे ऊपर वाजिब है, राइट। इल्म का हासिल करना हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, कुरान को समझना ये हमारे ऊपर कोई वाजिब नहीं है, ठीक है ना, और अपने मामलात के अंदर हलाल हराम की तमीज़ करना ये हमारे ऊपर कोई वाजिब नहीं है, ठीक है। ये हमने इन चीज़ों को वाजिबात की फहरिस्त से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला इंसान को कुरान के अंदर क्या बताता है कि तुम क्या करो क्या ना करो, और इंसान कहे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं अल्लाह ताला की बात सुनूं, मैं अल्लाह ताला की हिदायत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास टाइम ना होने से फिर आपको ये नहीं होगा कि भाई हाँ भी कोई बात नहीं टाइम नहीं था छोड़ दो इसको, नहीं, आप एक वाजिब के ऊपर अमल करने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका फ़र्ज़ था, हमारा फ़र्ज़ था कि जी उसकी तहकीक करें कि जी क्या चीज़ मेरे लिए जायज़ है क्या चीज़ मेरे लिए जायज़ नहीं है, और आप उससे इनकार कर रहे हैं, तो इस इनकार का गुनाह पड़ेगा। और गुनाह पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो है वो बस एक एक रजिस्टर के अंदर जो है ना किसी चीज़ को लिख लिया जाएगा और बस, नहीं, लिखा जाता है तो फिर उसका फिर उसकी सजा भी मिलती है, ठीक है। तो वाजिबात को जो हम इग्नोर करते रहते हैं और बड़ी आसानी के साथ हम समझते हैं कि जी हमें छोड़ दिया जाएगा, गुनाह भुला दिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा उसके ऊपर हमारे साथ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। गुनाहों पे सजा मिलती है, फौरन मिलेगी, नकद शक्ल में मिलेगी, या जो है वो ठहर करके मिलेगी, किसी और शक्ल में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इल्म है ना, ये फर्ज इल्म है, इसको इसी को के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, ठीक है ना। ये वो मामलात हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, इनमें हलाल और हराम का मालूम होना ये हमारे ऊपर फर्ज और वाजिब है, और अगर नहीं मालूम करेंगे तो इसमें फिर गुनाह पड़ेगा। तो फरमाया कि जी कौन से गुमान गुनाह हैं ताकि उनसे बचें, और जब तक किसी गुमान का जायज़ होना मालूम ना हो जाए उसके पास ना जाए। तो उलमा, अब तो इस वजह से अब जो बातें आपके सामने पढ़ी जा रही हैं इनको बहुत गौर से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, याद बेशक रहे ना रहे लेकिन कम से कम अभी तो समझ लें, तो इतना याद रह जाएगा कि जी हमने फलानी जगह पर ये चीज़ पढ़ी थी। तो जब आपको वास्ता पड़ेगा किसी ऐसे मामले का तो आपको तफसील बेशक याद ना आए लेकिन इतना ज़रूर याद आ जाएगा कि फलानी जगह पर इसकी तफसील लिखी हुई है, चलो मैं जा करके वहां पर चेक कर लूँ, इतना इल्म भी काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो इस नियत के साथ गौर से इसको सुने कि फरमाया कि उलमा और फुकहा ने इसकी तफसीलात बयान फरमाई हैं। कुर्तुबी ने फरमाया कि ज़न से मुराद इस जगह तोहमत है, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम, यानी किसी शख्स पर बगैर किसी कवी दलील के कोई इल्ज़ाम ऐब या गुनाह का लगाना, ठीक है। तो ये तो एक ज़न से मुराद उन्होंने बता दी तोहमत, लेकिन इमाम अबू बकर जसास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान में एक जामे तफसील इस तरह लिखी है कि ज़न की 4 किस्में हैं। इन 4 किस्में को ज़रा अपने पास नोट भी कर लें, या तो बुक के ऊपर ही नंबर्स डाल लें ताकि आपको अलग अलग 4 किस्में क्लियर हो सकें। नंबर 1 किस्म हराम होती है, दूसरी किस्म मामूर बिही और वाजिब, मामूर बिही का मतलब जिसका हुक्म दिया गया है यानी वाजिब है, तो मामूर बिही इज इक्वल टू वाजिब, ये दूसरी किस्म है ज़न की जो कि वाजिब। तीसरी किस्म जन की मुस्तहब और मंदूब, मुस्तहब का मतलब होता है कि करेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मंदूब भी इसी को कहते हैं, करने पर सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। और चौथी चीज मुबाह और जायज है, मुबाह और जायज का मतलब होता है कि जिसको करेंगे तो ना कोई सवाब ना कोई गुनाह, ठीक है, और अगर ना करें तो भी कोई सवाब और कोई गुनाह नहीं, ठीक है। तो बस परमिसिबल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मुबाह और जायज़। तो ये चार किस्में हो गई। अब हर किस्म को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर वन, जन्ने हराम, ठीक है। तो ये पहली की एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी रखे कि वो मुझे अजाब ही देगा या मुसीबत ही में रखेगा, इस तरह के अल्लाह की मगफरत और रहमत से गोया मायूस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी को इसके बगैर मौत ना आनी चाहिए कि उसका अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक तआला फरमाता है, अना उंदा वन्ने अब्दी भी, हदीस कुदसी है ये, ठीक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्लाह ताला के अल्फाज जो हम तक पहुँचते हैं ना, बल्कि यानी कुरान के अल्फाज ये नहीं होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया, लेकिन अल्फाज जो होते हैं ना वो उन अल्फाज को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते बल्कि अपनी तरफ मंसूब करते हैं, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अना इंदा वन्ने अब्दी भी, लेकिन इनसे पहले उन्होंने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ये कहता है, ठीक है। तो इस तरह से ना कुरान में और हदीस कुदसी में फर्क हो जाता है। तो ये हदीस कुदसी है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यानी इम्पोर्टेंट हदीस उस होती है ये हदीस कुदसी। यानी मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही बर्ताव करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान रखता है, अब उसको इख्तियार है कि मेरे साथ जो चाहे गुमान रखे। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के साथ हुस्न ज़न फ़र्ज़ है और बदगुमानी हराम है। अब यहाँ पर एक बात तो वो जो आपने यकीन दूसरी हदीसें भी सुनी होंगी कि अल ईमानु बैनर रजा एवल खौफ, ठीक है, कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान रहता है। यानी एक मोमिन जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीद की कैफियत में भी रहता है और अल्लाह ताला से खौफ की कैफियत में भी रहता है। तो किसी एक बात को समझने के लिए हमें बाकी चीज़ों को भी अपने सामने रखना होता है। तो किसी एक बात से ना खाली एक हदीस से या एक आयत से दीन का मिजाज समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो अगर हम सिर्फ इन अल्फाज को पढ़ेंगे तो उससे ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है कि भाई अल्लाह ताला से यही गुमान रखें कि जी बस अल्लाह ताला ने तो मुझे जन्नत में ही डालना है, ठीक है ना। तो ये इस किस्म के जो गुमान होते हैं ना, ये इनकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। बिकॉज ये अल्फाज तो ऐसे हैं कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में डालना है, ठीक है। लेकिन हकीकत इसकी क्या हो जाती है? हकीकत ये होती है कि हम असल में अल्लाह से गुमान नहीं रख रहे बल्कि हम अपने आप से बस ये गुमान रख रहे हैं कि जी मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ, मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ बस, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बस अपने आप के बारे में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव ही सोचना है और अपनी किसी भी बुरी बात को ना तो बुरा समझना है और ना जो है वो उससे उसमें नादिम और शर्मिंदा होना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं है। अलबत्ता मतलब इसका ये है कि जब इंसान कोई गुनाह कर जाता है, ठीक है, तो उस गुनाह से तौबा करे और साथ साथ अल्लाह ताला से ये गुमान रखे कि अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल भी कर लेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल भी कर लेंगे। ये गुमान ना रखे कि मैंने तौबा तो कर ली है लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने कबूल करी कि नहीं करी, पता नहीं जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई आपने अगर तौबा की शराइत पूरी कर ली है ना तो बस अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल करना ही है, आपका काम है शराइत को पूरा करना, ठीक है ना। शराइत पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो और बात है कि भाई शराइत क्यों नहीं पूरी कर रहे, पूरी कर रहे हैं शराइत को, ठीक है। यानी नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, आइंदा के लिए दिल में इरादा कर लें कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ठीक है। और चंद असबाब के दर्जे में अगर कुछ चीजें कर सकते हैं तो वो भी कर लें, जैसे कि उस गुनाह के मौके से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर लें, ठीक है ना। बस आपकी शराइत पूरी हो गई, अब उसके बाद ये ना सोचें कि अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बदगुमानी कहलाता है कि अल्लाह ताला फिर अब क्यों क्यों नहीं कबूल करेगा। भाई क्या अल्लाह ताला को आपसे कोई जाती दुश्मनी है? कोई कोई जाती दुश्मनी नहीं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को आपसे, और अल्लाह ताला को कोई खुशी नहीं हो रही आपको उठा करके जहन्नुम में फेंकने से, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जरूर तौबा को कबूल करेंगे। दूसरी बात ये कि खौफ जो है वो भी हमारे दीन का हिस्सा है, ठीक है, कि अल्लाह ताला को अपने जैसा ना समझे, ठीक है, कि भाई जैसे अपने बराबर के लोग होते हैं ना, अपने फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना, फास्ट फ्रेंड्स जो जो जिगरी यार किस्म के लोग होते हैं। तो अब जिगरी यारों के साथ मामला ये होता है कि जी आप उनके साथ कुछ भी करते रहें तो वो हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो भी आपके साथ करते हैं, आप भी उनके साथ करते हैं, तो इस तरह से छेड़ा छाड़ी जो है ना वो चलती रहती है। ठीक है ना, ये दोस्ती में रखना अंदाजी नहीं होती। जिन लोगों ने ऐसे जिगरी दोस्त बनाए होते हैं उनको इस बात का अंदाजा है, हर कोई तो ऐसे जिगरी दोस्त वगैरह बनाता भी नहीं है। ठीक है, हर एक का मिजाज नहीं होता कि लोगों से इतना ज्यादा फ्रैंक हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस होती है उनकी दोस्तों के साथ, तो उनके दोस्त जो है फिर माशाल्लाह चलते रहते हैं सारी जिंदगी उनके साथ। तो उनके साथ ना ये हंसी मजाक और छेड़छाड़ और मजाक और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना, तो वो फिर ताल्लुक खराब नहीं होता उनका, लेकिन ये मामला अल्लाह के साथ तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, कि हम अल्लाह ताला के साथ ना उस बिल्ला छेड़छाड़ करते रहें, अल्लाह ताला के साथ जो है वो यानी बदतमीजी करते रहें, अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त बनाते रहें, अल्लाह के महबूब ना उस बिल्ला उनको अपने हरकतों से इंसल्ट करते रहें, राइट? और फिर ये तवक्को रखें कि भाई अल्लाह ताला ने तो मसला ही नहीं है कोई, राइट? अल्लाह ताला ने तो कुछ नहीं करना इसके ऊपर। ठीक है ना, ये तो दोस्ती हमारी हमेशा वैसी दोस्ती रहेगी जैसे जिगरी यारों के साथ दोस्ती रहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे जिगरी यार तो नहीं है इस तरह के, अल्लाह ताला हमारे लेवल के तो नहीं है, हमारी उम्र के तो नहीं है। ठीक है ना, हमारी जैसी सलाहियतों और हमारे जैसे कल्चरल बैकग्राउंड के तो नहीं है अल्लाह ताला। ठीक है ना, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, वो तो खालिक है, मालिक है, कादिर है हर चीज के ऊपर। तो भाई अल्लाह ताला के साथ तो संभल के रहना पड़ेगा ना। ठीक है ना, संभल के रहना पड़ेगा। तो ये संभल के रहना जो है ना अल्लाह ताला के साथ, इसी को खौफ कहते हैं, इसी को खशियत कहते हैं, और कभी खौफ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिला लिमा बाद अल-मौत, कि अकलमंद तो वो होता है जो कि अपने नफ्स को रोकता है और मौत के बाद के लिए अमाल करता है। वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा, और आजिज वो होता है, आजिज और कमजोर और यानी जो कि हारा हुआ होता है। आजिज का तर्जुमा जो है ना उर्दू जुबान में कह सकते हैं हारा हुआ। ठीक है ना, द फेलियर, द फेल्ड वन। तो आजिज कौन होता है, द फेल्ड वन कौन होता है, कि जो कि अपने नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं उनकी इत्तबा करता है। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह ताला के ऊपर तमन्ना रखता है कि अल्लाह ताला उसको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देंगे, राइट? उसको ना तो आखिरत में कोई सजा मिलेगी और ना ही उसको दुनिया में कोई सजा मिलेगी, बस अल्लाह ताला उसको ऐसे ही उठा करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। ठीक है ना, जो कि मोमिनीन के रहने की जगह है, जो कि कुर्बानी देने वालों के रहने की जगह है, जो कि अल्लाह ताला की मान कर चलने वालों की जगह है, वहां इसको भी उठा करके डाल देंगे। तो इसको फरमाया कि ये तो फेलियर है, आजिज है ये शख्स तो। ठीक है, तो फेलियर रह करके फिर हम अल्लाह ताला के ऊपर तमन्ना बांधें, लंबी लंबी जो है वो आरजूएं और उम्मीदें बांधें, तो ये बेवकूफ़ी का काम है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो अल्लाह ताला के साथ जन्ने हराम की बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूजन का शिकार हम ना हो जाए, इस वजह से बात आपने हमें रख दी है। तो एक तो ये कि जब तौबा करी है तो अल्लाह ताला माफ करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर भी जो हमारे ऊपर तकलीफें वगैरह आती हैं, बीमारी आ गई या कोई और मुआशी तंगी आ गई या किसी और किस्म की कोई तकलीफ आ गई, तो अब ऐसे मायूसी का शिकार हो जाना कि बस ये तकलीफ अब मुझसे मेरे ऊपर से हट ही नहीं सकती, मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है। ठीक है ना, ये कैफियत भी जो होती है ना, ये भी शैतान की तरफ से होती है, इसको मायूसी कहते हैं। ठीक है, दुनियावी मामलात में मायूसी, और ये मायूसी गुनाह है, ये भी अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी ही के मानी में आता है। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला ने अगर तंगी दी है तो अल्लाह ताला खुशहाली भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने अगर बीमारी दी है तो अल्लाह ताला ताला बीमारी को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो क्यों नहीं दूर कर सकते। ठीक है, अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें उलमा से हमें पूछ लेना चाहिए कि कुछ अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं ना, तो उनमें अल्लाह ताला का उसूल ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में फिर दूर नहीं करते हैं। ठीक है, दुनिया में वो चीजें दूर नहीं होती हैं, तो उनके बारे में इस तरह से अगर हम गुमान रखना शुरू कर देना कि नहीं जी अल्लाह ताला कादिर है इसके ऊपर, अल्लाह ताला इसको भी दूर कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो मामला जो होते हैं वो इंसान के लिए उल्टा नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है वो उलमा से पूछ लेना चाहिए कि कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिनमें इस तरह से ना रहे कि जी बस अल्लाह ताला तो اسباب کے بغیر بھی سارے کام کر سکتے ہیں تو میرا بھی یہ کام کر دیں گے. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں خالی, ٹھیک ہے. ایک عورت جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں تو مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایسی اولاد ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور مجھے بغیر کسی مرد کے جو ہے نا مجھے اولاد ہو جائے گی, تو ایسے گمان باندھ لینا جو ہے نا یہ بھی جو ہے وہ یعنی گناہ کا کام ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کا سسٹم بنایا ہے ہم اپنے آپ کو اس سے بلند تصور کرنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تکبر والا گناہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ تکبر والا گناہ پھر انسان کو لے ڈوبتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ گمان کا معاملہ. اس کے بعد پھر مسلمانوں سے گمان کا معاملہ, تو آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. کیا بات ہوئی, بلا کسی قوی دلیل کے نیک جاننے والے لوگوں یا نیک جو لوگ پہچانے جاتے ہیں معاشرے کے اندر ان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر وہ بالکل بات نہیں ہو رہی جو کل بات ہوئی, ٹھیک ہے. کل کیا بات ہوئی تھی کہ کسی کو ظاہری طور پر آپ نے نیک دیکھا ہے تو اب اس کے اوپر آپ قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ صرف اور صرف نیک ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی منع کیا گیا تھا لیکن اس کی ریزن کیا تھی, اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ ان سے کسی ایسے معاملے میں ملوث نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہو, کیونکہ آپ نے تحقیق تو نہیں کری, اہل معاملہ لوگوں سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا, تو اس سے بھی منع کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر ایک الگ بات ہو رہی ہے, یہاں پر بدگمانی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, بس جو ہے وہ کچھ آپ نے ایک غلط بات دیکھ لی ان کے اندر یا کسی سے آپ نے کوئی غلط بات سن لی اور بدگمانی شروع کر دی. یعنی پھر آپ نے نا ان کو گویا کہ ایک جو آپ نے ان کو ایک اپنا گمان کے مطابق ایک بڑا اچھا مقام دیا ہوا تھا اپنے ذہن میں, ایک دم سے ان کو گرا دیا اس مقام سے, ٹھیک ہے نا, بغیر کسی قطعی دلیل کے, قوی دلیل کے بغیر ہی. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے, یہ بدگمانی بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن, ٹھیک ہے, کہ ظن سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, کہ بے شک ظن جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کس ظن کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر اس والے ظن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مسلمانوں کے کسی نیک مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے آپ بدگمانی کرنا شروع کر دیں, یعنی کمزور دلیلوں کی بنیاد پر بدگمانی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آج کل تو لوگوں نے, اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, لوگوں نے اپنے اوپر یہ اپنے اوپر ایک واجب بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی علماء اور مشائخ کے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں کو بدگمان کرنا ہے. اب وہ یعنی اب کہتے ہیں نا وہ مسلح, اپنے طور پر وہ مسلح بنے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو انم المسلحون, ہم تو جی سلو کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کسی کو دیکھا کہ وہ کسی شیخ کے ساتھ اس کا اصلاحی تعلق بنا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے, اس کی زندگی بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے, اب ان کو ان شیخ کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایک بری بات پتا لگی کہیں سے, کسی تھرڈ پرسن سے, کسی واٹس ایپ گروپ سے, کسی ویب سائٹ سے, کسی جو ہے فیس بک پیج سے کچھ پتا لگ گیا. اب اپنے اوپر جو ہے نا اس بات کو واجب کر لیا کہ میں ان صاحب کا تعلق توڑواؤں ان کے شیخ سے, میں توڑوا کے چھوڑوں گا کیونکہ میں خیر کرنا چاہتا ہوں, میں تو مسلح ہوں, میں تو اصلاح کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب جا کر کے جو ہے وہ ان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ تم نے سنا وہ کیا ہوا ادھر, اور وہ ویسے کیسے ہو گیا, پھر انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا, انہوں نے ویسے کیوں کہہ دیا, رائٹ. سنی سنائی باتیں ادھر کی ادھر سے اڑائی, ادھر سے ادھر سے اڑائی, اور پہنچ گئے کسی کے پاس لے کر کے, ٹھیک ہے, کہ بھائی تعلق توڑوائیں ان کا, تاکہ کل جیسے بات ہوئی تھی نا ڈاکٹر کے بھی بدگم کے خلاف بھی ہو جائیں اور بندہ پھر ایسا بھی ہو کہ ڈاکٹر ہی کے ہی خلاف ہو جائے تاکہ یہ بے علاج ہی مر جائے. تو اس قسم کی جو بدگمانیاں ہوتی ہیں تو ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, ایاکم والظن, بچاؤ اپنے آپ کو ایسے گمانوں سے, ٹھیک ہے. تو یہاں ظن سے مراد با اتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے. اب یہ قوی دلیل ہوتی کیا چیز ہے بھائی, ٹھیک ہے, قوی دلیل کیا چیز ہوتی ہے, تو قوی دلیل جو ہوتی ہے نا یہ بھی یعنی اس میں بھی پھر تفصیلات ہیں کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی کوئی چیز اور ایسی چیز کہ جس میں دوسرا کوئی احتمال ہی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ پیچھے ایک کلاس میں بات ہوئی تھی کہ بھائی دو مستند علماء ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ تین کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں, مشائخ, علماء کرام اور دین کی محنت کرنے والے عوام الناس جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا جو ایک معاشرے کے اندر ریپیوٹیشن بنی ہوتی ہے نا, اس ریپیوٹیشن کی بنیاد پر دین کا پورا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انسانوں کے واسطے سے چلاتے ہیں. پیچھے واسطے کی لمبی بحث ہم کر چکے ہیں ابھی اسی کلاس کے اندر شروع میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان واسطوں کا نظام بنایا, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا علم دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں, دین کی سمجھ دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں, اور دین کے اوپر چلنے کے لیے جو ایک ہمت اور حوصلے اور سپورٹ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بناتے ہیں. دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ایک سپورٹ سسٹم معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کیا ہے, رائٹ. اسی طرح سے مدارس کے ذریعے سے, خانقاہوں کے ذریعے سے یہ سپورٹ سسٹم ہے. لوگ ان محفلوں میں آتے ہیں, اپنے دین کو اسٹرانگ کرتے ہیں, رائٹ. ان کو دین پہ چلنے کے لیے جو ہے وہ یعنی ہمت ملتی ہے ان محفلوں میں آنے سے, ان مدارس میں جانے سے, جماعت میں نکلنے سے. اگر ان کے بارے میں بدگمانی معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کر دیں گے تو یہ پورا کا پورا سپورٹ سسٹم جو ہے نا یہ قائم نہیں رہ سکے گا, یہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ کریش کر جائے گا. اور اس سپورٹ سسٹم کے کریش کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس سے تقویت حاصل کر رہے تھے وہ سارے کے سارے محروم رہ جائیں گے. اب ان کو تقویت دینے والی چیزیں نہیں رہیں گی. جب ان کو یہ چیزیں نہیں رہیں گی تقویت دینے والی, وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے, وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے. معاشرے سے دین کا خاتمہ ہو جائے گا, معاشرے سے دین کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اور یہ نقصان دنیا میں کئی جگہوں پر ہو چکا ہے, رائٹ. کئی اسلامک ممالک ایسے تھے جہاں پر یہ سپورٹ سسٹم کریش ہو گیا, اور وہاں پر ایسا معاملہ ہو گیا کہ کلمہ تک جاننے والے لوگ نہیں ملتے. ان کو دیکھ کر کے ہیں وہ نام کے مسلمان, لیکن کافروں میں اور ان میں کوئی تمیز, کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ بدگمانی کرنا یہ بہت بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو قوی دلیل جو ہے, اس قوی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری آپ تاویلیں دیں کہ نہیں, ایسا جو غلط چیز ہے وہ اصل میں غلط نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے, اس کا مطلب کوئی اس میں خیر ہی ہوگی, کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی, یا میری نظروں کو دھوکہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, میرے کانوں کو دھوکہ ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو تاویلیں دینی ہوتی ہیں. تو تاویلیں دینے کا جو سسٹم ہے نا, یہ ہمارے دین کا ایک لازمی جز ہے. لیکن یہ تاویل جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بڑوں کے بارے میں دی جائے, ٹھیک ہے. یہ تاویل دینا, ایکسپلینیشن دینا, پیچھے بھی بات ہوئی تھی, دوبارہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ تاویل دینا یہ صرف ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کہ ہمارے ہوریزونٹل لیول, ہمارے لیول کے اوپر, ہمارے سطح کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تاویل دینا, وہ تو ہے ہی. یہ تاویل دینا جو ہے یہ سب سے اونچے مقام سے شروع ہوتا ہے, انبیاء سے شروع ہو جاتا ہے. انبیاء کے لیے تعویل دینا, ٹھیک ہے نا, قرآن کے اندر انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جن کو کہ ایک عام آدمی اگر پڑھتا ہے تو اس کو وہ باتیں غلط لگتی ہیں کہ فلاں نبی نے یہ غلط کام کیا, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ذہن میں یہ باتیں نبی کے بارے میں آ سکتی ہیں, لیکن جو صحیح دین سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں, ہم نبی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے, ہمیں اس کے لیے تاویل دینی ہوگی کہ ان نبی نے جو یہ کام کیا تھا یہ در حقیقت ایسے نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تھا, اصل میں خیر تھی اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. جبکہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ادب نہیں سیکھا ہوتا, جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, وہ اسی آیت کی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی انہوں نے یہ کام کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو یہ کام. تو ایسے ایسے الفاظ ان کی تفسیر میں موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلط کام کیا, یہ کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام. یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے, نعوذ باللہ, رائٹ. جس طرح سے मिसोलिनी और हिटलर, ठीक है ना, वो जो इटली का था और हिटलर जो जर्मनी का, राइट, जिस तरह हिटलर और मिसोलिनी जो है वो डिक्टेटर बन के बैठे, उसी तरीके से नाउज बिल्ला यूसुफ अलैहि सलाम डिक्टेटर बन करके बैठे, ठीक है ना। मूसा अलैहि सलाम आगे आगे चलते गए, नई नई फतुहात करते गए, और पीछे का निजाम जो है वो खराब छोड़ते गए, जो पीछे छोड़ते गए वो खराब होता गया, आगे आगे नई नई फतुहात करते गए। अब मूसा अलैहि सलाम को जो है वो यानी पढ़ा रहे हैं कि जी मूसा अलैहि सलाम को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। इतनी बात समझ में नहीं आती कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह की मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकते, ये जो मासूमियत वाली कॉन्सेप्ट है उसको मानते ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें। तो भाई ये तावील देना जो है ये सिर्फ ये नहीं कि जी अपने जैसे लोगों के लिए तावील देने की जरूरत है, अम्बिया के लिए तावील देनी, हमारे जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इतनी बेहतरीन तावीलात देते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है, इतनी खूबसूरती से बचा ले जाते हैं अम्बिया को, सहाबा को। सहाबा के बारे में तो अभी हमने तफसीर पढ़ी, कत्लो खून रेजी हो आपस में, लेकिन हमारे अकाबरीन, तरबियत याफ्ता अकाबरीन, तो उन्होंने कैसी कैसी तावीलात दी हैं सहाबा के हक में, इधर की बे इधर के भी शहीद हैं, उधर के भी शहीद हैं। सहाबा अगर जंग भी करें तो भी वो शहीद हैं, इधर के भी शहीद हैं, उधर के भी वो शहीद हैं, इधर उधर के भी शहीद हैं, ठीक है ना। तो भाई तावील दे रहे हैं कि सहाबा ने जो काम किया तो ये अल्लाह की खातिर किया, उनका ये काम भी जो है अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह नहीं कहलाया, ठीक है ना। उसी तरीके से अपने मशाइख के बारे में तावील देनी होती है, अपने उलमा के बारे में तावील देनी होती है। अब पिछले दिनों एक भाई से बात हो रही थी, ठीक है, तो उसको मैंने उनको जो है वो अपनी ही मिसाल दी, ठीक है ना, तावील वावील के मुताबिक बात चल रही थी, अपनी मिसाल दी कि भाई हमारे अभी हम मस्जिद में एतकाफ में चंद दिन गुजार करके आए हैं, नफली एतकाफ किया था, ठीक है, अपने शेख की खानकाह के अंदर। तो वहां पर क्या सिखाया जाता है सबको, ठीक है, कि भाई आप एतकाफ में हैं, मस्जिद में हैं, यहाँ पर जो है वो आप इबादतें करें, आपस में बातचीत ना करें, इबादतें करें, ठीक है ना, बातचीत ना करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा आराम कर लें बस, ठीक है ना। लेकिन अब इस आजिज का एक करीबी रिश्तेदार, बहुत अरसे के बाद उससे मुलाकात हुई, ठीक है ना, और उससे जो है वो बहुत यानी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट ईमानी लेवल की बहुत सारी बातें थी जो कि उससे मुझे करनी थी, अपने बारे में भी, अपने खानदान के बारे में भी, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप है, खानदान के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, और इनका ताल्लुक यानी सिर्फ गुनाह से नहीं, डायरेक्ट ईमान से था, ठीक है, कि भाई हमारी आने वाले नस्लों के ईमान की कैसे हिफाजत की जाए, कैसे असबाब इख्तियार किए जाएं, क्या तदबीर इख्तियार की जाए, ठीक है ना। तो अब मेरे पास उसके अलावा और कोई मौका नहीं था, क्योंकि अब कोई मौका नहीं है कि उससे दोबारा मुलाकात हो लंबे अरसे तक। वही एतकाफ के अंदर, वही खानकाह की मस्जिद के अंदर बैठ करके तहज्जुद का वक्त था, वही एक वक्त मिला हमें बात करने का, अब बैठ करके उनके साथ अच्छी खासी देर तक बात करी लोगों के दरमियान में, बिकॉज कोई और जगह ही नहीं है जहाँ पे बैठ के बात कर सकें, ठीक है। तो अब कोई देखने वाला अगर ये कहना शुरू कर दे, ये देखो जी, ये देखो, दूसरों को तो कहते हैं और खुद तो अमल करते नहीं हैं, हैं भाई, ये तो तहज्जुद का वक्त था, इस वक्त तो इनको तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी, जिक्र कर लेते, तिलावत कर लेते या आराम कर लेते, बड़ों की बात पर अमल कर लेते, लेकिन देखो ना जरा बैठ के बातें कर रहे हैं, बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अब उनको हम कैसे समझाएं भी, उन्होंने ना तो आके हमसे पूछा, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से कोई तावील दी कि भाई कोई कोई काम की बात कर रहे होंगे, कोई अहम बात कर रहे होंगे, कोई जरूरी बात कर रहे होंगे, दीनी बात कर रहे होंगे, फायदे की बात कर रहे होंगे, ऐसा मौका जो है वो इनके पास दूसरा नहीं होगा बात करने का, इस वजह से बात कर रहे होंगे। तो ये सारी तावीलात है ना, ये तावीलात अगर उन्होंने नहीं दी हो, अगर नहीं देगा कोई बंदा तो क्या होगा, बदगुमान होगा, दिल में उसके वसवसे आएंगे, ठीक है ना, फिर उससे कुछ भी हो सकता है, फिर आगे जा करके आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तावीलात देनी बहुत जरूरी होती है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे बारे में तावीलात दें, ठीक है ना, हम जो भी गलत काम करते रहें कभी किसी को हमारे से बदगुमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारे बारे में लोगों को जरूरी है तावील देना, लेकिन हम दूसरों के लिए तावील देने के लिए तैयार नहीं रहते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, हमें अपने बारे में तो बल्कि दीन सिखाता है कि बदगुमान होना चाहिए, दूसरों के बारे में जो है वो हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, खुसूसन अपने मशायख, अपने अपने से बड़े लोगों के बारे में जो दीन पर ज्यादा काम कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, कोई सवाल? ये क्या लिखा है कि किसी की शदीद परेशानी ख़त्म नहीं हो रही हो और कुछ साल इसी में गुजर हो और ना उम्मीदी आ रही हो, तो कैसे अल्लाह से हुस्नुज़न बरकरार रखा जाए? अगर बदगुमानी अल्लाह ताला के बारे में दिल में आ रही है तो इंसान को फौरन जो है ना उस पर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ में लग जाना चाहिए, ठीक है ना। और दुआ के बाद क्या चीज़ आती है? दुआ के बाद आती है दवा, ठीक है। ये बदगुमानी ये दवा है, सॉरी, ये जो बदगुमानी का इलाज है ना, ये दवा के जरिए से करना होता है। जिस तरीके से बाकी बीमारियों का इलाज हम दवा से करते हैं ना, सिर्फ दुआ से तो नहीं करते, उसी तरीके से बदगुमानी का इलाज भी दुआ के साथ साथ दवा से करना होता है। तो बदगुमानी का इलाज करने के लिए कौन सी दवा होती है? बदगुमानी का इलाज खुसूसन जब अल्लाह ताला के साथ हो तो उसके लिए फिर उलमा मशाइख से रुजू करना होता है, बात करनी होती है कि भाई मेरे साथ ये बदगुमानी वाला मर्ज लग रहा है, मैं कैसे इसका इलाज करूं, ठीक है। तो जब उनसे बात करते हैं ना तो फिर वो हमें उम्मीद की बातें भी बताते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीका भी बताते हैं और आपके अहवाल सुन करके भी बताते हैं कि भाई आप, हो सकता है गलत फहमी की वजह से आप जो है वो मायूस हो रहे हैं, इसमें कोई मायूसी की बात तो नहीं है, इसमें तो बड़ी यानी उम्मीद अफजा बात है आपके मामले में, पहले ऐसा था अब जो है वो आपका मामला जो है वो बेहतर हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन वो बेहतरी जो हुई होती है शैतान जो है वो हमारी नजरों से छुपाने की कोशिश करता है ताकि हम पुरउम्मीद ना हो जाएं। लेकिन जब मशायख से बात करते हैं तो मशायख हैं वो उस जो थोड़ी सी भी बेहतरी आई होती है ना उस बेहतरी को उजागर करके हमें बयान करते हैं, ठीक है। तो फिर हम बदगुमानी में के रास्ते पर चलने से बच जाते हैं। तो हमें जो है ना इस बात को लेके बैठना नहीं चाहिए और खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ के साथ साथ जो है वो अपने मशायख से उस मामले को खुसूसन डिस्कस करना चाहिए ताकि बदगुमानी दूर हो सके। एक बात याद रखें, जो नए लोग हैं उन्होंने पहले नहीं सुना होगा, पुराने लोग तो सुनते ही रहते हैं, कि ये जो शैतान होता है ना, शैतान, ठीक है, ये शैतान के जो वसवसे होते हैं इन्हीं वसवसों के से बचने के लिए अल्लाह ताला ने शेख का निज़ाम रखा है, ठीक है। शैतान और शेख दोनों ही शीन से आते हैं, ठीक है। शैतान जो है वो अल्लाह ताला से दूर ले जाने की कोशिश करता रहता है और शेख का काम ये होता है कि बंदे को अल्लाह ताला के करीब लाने की कोशिश करे, ठीक है। तो शैतान के वसवसों का इलाज जो है वो शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना और फिर इस्लाही ताल्लुक में को निभाना, ठीक है, यानी मशवरे भी करना और बातों को डिस्कस भी करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वरना शैतान के वसवसों से बचना जो है ना वो आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी जन्ने वाजिब कि हमने अल्लाह के साथ और जन्ने हराम कहेंगे ना इसको, कि अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी करना या नेक मुसलमानों के साथ बिला किसी कवी दलील के बदगुमानी करना। कवी दलील के बारे में बल्कि आपको बता रहे थे कि कवी दलील जो है ये भी यानी ये भी डिटरमिन करना कि क्या दलील जो है वो कवी है भी सही कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी इल्म की जरूरत पड़ती है। तो एक कम इल्म आदमी जो है वो इवन ये भी सही फैसला नहीं कर पाता कि जो दलील मेरे पास पहुंची है ये तवी दलील कहलाने के काबिल भी है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनकी तावील पेश की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास इल्म नहीं होता तो कम इल्मी की वजह से हम तावील नहीं पेश कर पाते, हम समझते हैं कि ये बड़ी तवी दलील है, ठीक है ना, लेकिन वो कवी दलील नहीं होती है, वो कमज़ोर दलील होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी भी कोई अगर दलील हमारे सामने आ जाए ना जिसको हम कवी समझ रहे हैं, हमें चाहिए कि फिर उसको भी वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई ये कवी दलील है कि नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मशायख ने एक बात लिखी कि भाई यानी एक जब किसी नेक इंसान के बारे में कोई बदगुमानी आए तो हमें उनसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए। शायद आपका सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि शेख अगर दूर हों, रब्ता मुश्किल हो, ख्वातीन अगर बयानात सुनते रहें उनका, तो क्या वो भी रब्ता शेख में आ सकता है? बयानात सुनते रहें उससे तो रब्ता शेख मजबूत होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना इस दौर के अंदर राबते के निज़ाम को बहुत आसान कर दिया है, जो कि इससे पहले दौरों के अंदर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले खत लिखे जाते थे, और खत जो है वो हर दौर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है ना। पहले जो है वो खत पहुंचने में कितना कितना वक्त लगता था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ही नहीं, ये इंटरनेट का सिस्टम अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो नहीं बना दिया ना काफिरों ने, राइट। अल्लाह ताला की मर्जी से ये इंटरनेट का सिस्टम आया है, अल्लाह की मर्जी से ही जो है ये व्हाट्सएप का सिस्टम भी आया है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने राबतों का सिस्टम इतना आसान बना दिया है, तो अब तो दूर और करीब के दरमियान फर्क ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अब तो व्हाट्सएप मैसेज जो है वो चाहे आप दुनिया के दूसरे कोने से लिखें, चाहे आप बराबर के कमरे से लिखें, एक ही वक्त में पहुंच जाता है तकरीबन, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम रابطे के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी फ्री है ये। पहले तो SMS मैसेज भेजा करते थे, उसके ऊपर पैसे लगते थे कुछ ना कुछ, राइट। 25 हलाला लगता था या 1 रुपया लगता था, अब तो 1 रुपये भी नहीं खर्च करना पड़ता, ठीक है ना। तो अब तो बल्कि ये मामला हो गया है कि लोग जो है वो राबता मुलाकात के लिए घर आया करते थे। तो भी पहले था कि जी लोग करीब रहते हैं, सिर्फ वही घर आके राबता मुलाकात कर सकते हैं, आमने सामने बैठ करके जो मुलाकात होती है, जिसमें एक अलग ही लेवल ऑफ डिटेल होती है, जो कि पीछे फोन के ऊपर या वैसे नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब अल्लाह ने इतना आसान कर दिया कि ये जो फ्री कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो उनके ऊपर आप इस तरीके से भी जो है वो राबता मुलाकात कर सकते हैं। अब जो है वो हम दुनिया के कोने में बैठे होते हैं, दुनिया के दूसरे कोनों के ऊपर लोग मौजूद हैं, तो उनके साथ जो है वो जूम के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है जी, ठीक है। उलमा ने भी इसको जायज़ करार दिया है। जाहिर है पर्दा तो अगर अगर औरत है तो उसके साथ तो वैसे भी पर्दा करना है, ठीक है ना। इंटरनेट के ऊपर बेपर्दगी जायज़ तो नहीं हो जाती, लेकिन जो मर्द हैं तो उनके साथ तो आप आसानी से बात कर सकते हैं ना, और औरत के साथ वैसे भी जो है वो खतो किताबत के जरिए से व्हाट्सएप के ऊपर बात होती है। और अगर जरूरत पड़े तो आवाज का पर्दा नहीं होता है, ठीक है ना। आवाज का पर्दा नहीं होता है, वो लुचदार आवाज का पर्दा होता है। तो भाई राबता मुलाकात के अंदर कोई लुचदार आवाज से कोई थोड़ी औरत बात करती है। फतवा पूछने के लिए जब मुफ्ती साहब के पास जाते हैं तो फिर आवाज से ही फतवा पूछा जाता है ना, लिख करके जरूरी नहीं होता, बल्कि लिख यानी बोल करके फतवा पूछा जाता है। तो उसी तरीके से पर्दे के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने जो हमें ये टेक्नोलॉजी मुयसर की है, तो इनके जरिए से रबता रखा जा सकता है। लेकिन ये जो बयान और क्लासेस वगैरह सुनना होता है, तो इससे जो है वो रबते के अंदर मदद मिलती है, असिस्टेंस मिलती है। क्योंकि रबते के अंदर पहला सवाल तो यही होता है कि जी किस बात पे रबता करें, किस बात को पूछें, ठीक है ना। हमें यही समझ में नहीं आता कि हम पूछें तो क्या पूछें। तो अगर क्लासेस और बयान सुने जा रहे होते हैं तो उनसे ये अंदाजा हो जाता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो अहम हैं हमारे लिए, तो हम इन बातों को डिस्कस कर लिया करें, इनके बारे में सवाल कर लिया करें। तो असिस्टेंस होती है क्लासेस और बयान सुनने से, ठीक है। तो ये जन्ने हराम हो गया, फिर उसके बाद जन्ने वाजिब और जन्ने मुस्तहब, मुस्तहब और जन्ने मुबाह, ये तीन और जन की किस्में हैं जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कोई बात जन्ने हराम के बारे में रह गई हो? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो यानी अच्छा गुमान रखना, तो इसमें भी ना वही हम अपनी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बात करते हैं, तो उसको यहाँ पर भी आपके सामने रखना ज़रूरी है कि इंसान की जो ताल्लुकात की जिहतें होती हैं, सिमतें होती हैं, वो दो होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो आप आपस में जो एक जैसे लोग होते हैं उनके साथ जो ताल्लुकात होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल ताल्लुकात कहते हैं, और वर्टिकल ताल्लुकात जो हैं वो ऊपर, ठीक है ना। और एक होता है यानी वर्टिकल ताल्लुक, एक तो हम तो यूजुअली हम ऊपर की बात करते हैं ना वर्टिकल ताल्लुक में, लेकिन जन के टॉपिक में हम ऊपर के साथ साथ नीचे की भी बात करेंगे, वो भी तो वर्टिकल में आता है। वर्टिकल जो है वो सिर्फ टॉप की तरफ तो नहीं होता, बॉटम की तरफ भी तो वर्टिकल होता है ना, ठीक है। तो वर्टिकल निस्बत में हमने अपने ऊपर वाली निस्बत के बारे में बात कर ली कि उनके साथ तो हमने अच्छा गुमान रखना है। हॉरिजॉन्टल यानी अपने जैसे लोगों के बारे में मामला ये होता है कि जिनको पीयर्स कहा जाता है, ठीक है ना, अपने जैसे लोग, या पीर भाई पीर बहन भी कहा जाता है कि भी एक ही शेख के साथ ताल्लुक है, ठीक है, या ये कि सारे ही मुसलमान हैं और एक ही हम सब के नबी हैं, तो ये ताल्लुकात हमारे पीयर ताल्लुकात कहलाते हैं एक जैसे लोगों के साथ। तो उनमें भी अच्छा गुमान रखना, ठीक है ना। हत्ता के मशाइख ने यहाँ तक लिखा कि 70 अगर बुरी तवजीहात अगर 70 बुरी तौजीहात बनती हो ना, तो एक अच्छी तौजीह जो है उसको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, कि भाई हो सकता है कि ये जो गुनाह मुझे ज़ाहरी तौर पर लग रहा है ये ज़ाहरी तौर पर ऐसे ना हो जैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। इसकी बड़ी मिसालें किताबों में भी लिखी हैं। अच्छा, तीसरा जो रुख बनता है गुमान के टॉपिक में, वो बनता है अपने से नीचे वालों के बारे में गुमान, ठीक है। ये जो नीचे वाले होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये नीचे वालों से मुराद जो है वो अपने शागिर्द, अपना शागिर्द, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका मरीज, या अगर आप शेख हैं तो आपका जिसको मुरीद कहते हैं या सालिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये नीचे की निस्बत है, यानी उस्ताद के लिए नीचे कौन होता है? शागिर्द। शेख के लिए नीचे कौन होता है? उसका मुरीद। या उस या डॉक्टर के लिए नीचे कौन होता है? उसका मरीज, ठीक है ना। नीचे वालों के साथ गुमान क्या होता है? नीचे वालों के साथ गुमान बुरा रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नीचे वालों की करनी होती है इसलाह, ठीक है ना। उस्ताद ने शागिर्द की इसलाह करनी होती है, किस मामले में? इल्मी मामले में, इल्म के मामले में शागिर्द की इसलाह करनी होती है। तो अब उस्ताद अगर यही समझता रहे कि हाँ जी शागिर्द साहब जो हैं ये तो बड़े अच्छे होंगे और उन्होंने तो सबक समझ लिया हो गया, सबक जो है वो समझ में आ गया होगा उनके, ठीक है ना, और ये तो बड़े जहीन है और ये तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या निकली कि शागिर्द साहब जो हैं वो तो मुराकबे में थे, जब क्लास पढ़ाई जा रही थी वो तो मुराकबा कर रहे थे या अपने फ़ोन के साथ खेल रहे थे। तो अब उस्ताद का जो अच्छा गुमान रखना है वो शागिर्द के लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नुकसानदेह हो गया? नुकसानदेह हो गया ना। शागिर्द साहब को तो कुछ समझ में बात नहीं आई, उन्होंने तो इम्तिहान में फेल हो जाना है। तो उस्ताद साहब का अच्छा गुमान रखना शागिर्द के हक में अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स इल्म के मामले में, ठीक है ना। ये नहीं कि शागिर्द जो है वो किसी घटिया किस्म की जगह से आया होगा, इसके माँ बाप जो है वो गुनाहगार होंगे और ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, नहीं, वहां पे नहीं, बिकॉज यहाँ पे इल्म की बात हो रही है। तो इल्म के मामले में अच्छा गुमान रखना शागिर्द के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। उसी तरीके से डॉक्टर साहब के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, अब डॉक्टर साहब जो है वो आपसे चंद एक बातें सुने और कहेंगे नहीं नहीं जी सब ठीक ही होगा, राइट, आप ऐसी जो है ना बस अपने बारे में परेशान हो रही हैं, आप ठीक ही होंगी ना, बस आप जाएं घर, जाएं घर जा करके जो है ना वो आप बस जैसी जिंदगी गुजारी वैसी गुजारती रहें, कोई आपको इलाज विलाज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ना तो उन्होंने आपसे डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस किए, ना तो उन्होंने आपका ब्लड टेस्ट करवाया, ना उन्होंने आपका सीटी स्कैन करवाया, ना उन्होंने जो है वो कोई और आपके स्टेथोस्कोप के जरिए से आपका जो है वो यानी नब्स चेक करी, ना जो है वो खांसी चेक करी, ना कुछ चेक किया, राइट। ऐसी जो है वो अच्छा गुमान रख करके आपको घर वापस भेज दिया, तो क्या होगा आपका फिर, राइट। आप तो कोई सिम्टम्स लेकर के आए थे, डॉक्टर साहब ने अच्छा गुमान रख करके चलता कर दिया आपको, तो आपके हक में ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? राइट, बुरा होगा ना, ठीक है। टाइम नहीं है वरना आपसे खुद पूछते सवाल था कि आप खुद जो है वो अपनी जुबान से करार करते इस बात का, ठीक है। उसी तरीके से जो मुरीद शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाता है तो वो अपने रूहानी बीमारियों की इस्लाह के लिए बनाता है, ठीक है ना। अब शेख साहब कहेंगे नहीं जी सब ठीक है, आप तो बड़े माशाल्लाह अल्लाह के वली हैं, ठीक है ना, आप तो जो चेहरे से जितने अच्छे नजर आते हैं उसकी वैसे ही जो है वो आपकी बातनी कैफियत भी वैसी ही होंगी यकीनन, ठीक है ना, तो आपको कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, कोई मुजाहिदे की भी जरूरत नहीं है, कोई जिक्र अज़कार की भी जरूरत नहीं है, आपको जो है वो किल्लत कलाम, किल्लत ताम, किल्लत इख्तलात माला नाम की भी जरूरत नहीं है, आपको जो है वो कुछ इल्म हासिल करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो माशाल्लाह अल्लाह के वली पैदाइशी हैं और ऐसे ही आपने मरना भी है, तो फिर ये मुरीद के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ठीक है ना। तो भाई नीचे की निस्बत के अंदर बदगुमानी करनी पड़ती है, ठीक है ना, यानी बदगुमानी फायदेमंद हो जाती है। अब बदगुमानी की ज़ाहिर लिमिट्स होती हैं, बहुत ज्यादा बदगुमानी भी नहीं, लेकिन गौर करना पड़ता है, गुमान ये रखना पड़ता है कि भाई ये बंदा आया है तो कुछ ना कुछ अल्लाह ने किसी वजह से भेजा है मेरे पास, इस तरह से सोचना चाहिए, अल्लाह ने मेरे पास किसी वजह से भेजा है, ठीक है ना, तो इलाज मकसूद होगा, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर के पास भेजा है, ठीक है ना। अब मैं इसका इलाज करूं, मैं इसके साथ खुशगुमानी रख करके इसको घर वापस ना भेज दूं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो मशाइख होते हैं ना, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगर ये अपने सालिकीन के साथ कोई ऐसा मामला कर रहे हैं, डांट डपट वाला मामला, रोक टोक वाला मामला, सख्ती वाला मामला, तो ये इनका यानी इनके क्या कहते हैं उसको, फरीजा मनसबी है ये, इनका इनके मनसब का फरीजा है ये, ان سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے مرید کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان رکھتے اور مرید کی جو ہے وہ ذرا آؤ بھگت کرتے اور اس کی جو ہے وہ غلطیوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے اور یہ کر دیتے وہ کر دیتے. بھائی وہ نہیں کر سکتے یہ کام. ہاں دوسروں سے پردہ ضرور رکھتے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ضرورت جہاں پر ہوتی ہے بہت یعنی مناسب یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے ان کا پردہ رکھتے ہیں, کبھی دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے دوسروں سے ڈسکس کرنے کی, لیکن وہ بھی اصلاح کی نیت سے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کسی بچے کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ لگی تو اب بچے کی اصلاح زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کے والد صاحب کر سکتے ہیں, تو والد کے سامنے اس بچے کی کوئی برائی جو ہے وہ ڈسکس کر لی تو یہ اس کی پردہ دری نہیں کہلائے گا بلکہ یہ اس بچے کی اصلاح ہی کے لیے اس نے ڈسکس کری ہے. اس طریقے سے کبھی چیزوں کو دوسروں کے سامنے کھولتے بھی ہیں, لیکن ویسے جو عام اصول ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی دوسرے سے کسی کی برائی کو ڈسکس نہیں کرتے, پردہ رکھتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی وہ عمومی سی بات بیان بھی کرتے ہیں نا تو نام لیے بغیر بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ جو بھی علامات اس کی طرف اگر پوائنٹ کرتی ہوں بندے کی طرف تو ان علامات کو بھی جو ہے وہ اریز کر دیتے ہیں اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ بدگمانی کے بارے میں ایک الحمدللہ کافی مفصل گفتگو ہو گئی. کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ پھر آپ کل پوچھ لیجیے گا, ابھی کافی ایکسٹرا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, وآخر